श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उसी के क्रम में देखेंगे कि किस प्रकार यूहन्ना हमें झूठे शिक्षकों से सावधान करता है और हमें उस पर निर्भर होने की बातें कहता है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम जब आपके वचन में से सीखें तो आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हम सबसे बोलने और बातचीत करने पाए, हमारे जीवन के हर एक प्रकार की कमी घटी और त्रुटियों को हमें दिखाने पाए, ताकि हम उससे छुटकारा पा सकें, आपसे प्रेम कर सकें और आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाएं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, किसी भी रीति से परेशान है, पिताजी आप उन पर दया दृष्टि करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें, ताकि प्रभु वे आपके वचन पर और अधिक विश्वास करने पाएं। हाँ प्रभु, इस घड़ी हम में से हर एक पर अपनी आशीष प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यूहन्ना कहता है कि जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है वह झूठा है, और जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का इनकार करता है वह मसीह का विरोधी है। जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता परमेश्वर भी नहीं है, परंतु जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है उसके पास पिता परमेश्वर भी है और उसके पास शांति भी है। झूठी शिक्षा से भरमाए ना जाओ, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है और वह तुम्हें सत्य का ज्ञान प्रदान करेगा। अतः तुम पवित्र आत्मा की शिक्षा में ही रहो। अतः हमें पवित्र आत्मा की शिक्षा में बने रहना है कि जब प्रभु यीशु आए तो हमें याब हो और हमें लज्जित ना होना पड़े, वरन हम प्रतिफल पाएं। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है अभिषेक। अभिषेक का मूल अर्थ है लेप करना। आज हम विश्वासियों के लिए इसका तात्पर्य क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञा थी कि याजकों को तेल से अभिषेक किया जाए, अतः यहां अभिषेक का अर्थ है कि किसी कार्य विशेष के निमित्त पवित्र आत्मा का लेप किया जाना। उद्धार पाने पर पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करता है। तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, जी हां, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक इसलिए करता है कि आप परमेश्वर के सत्य को समझ सकें जो अन्यथा आपकी समझ से परे थे। कहता है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। यहां पर आप वचन को गलत ना समझें। यूहन्ना के कहने का अर्थ यह नहीं कि आपको बाइबल शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। पौलुस कहता है कि हम में से कुछ को शिक्षक, प्रचारक, कुछ को चरवाहे होने का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है कि मसीह की देह अर्थात विश्वासियों का निर्माण हो। अतः अच्छे शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करना अति महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में मैं ईश्वर भक्त मनुष्यों का आभारी हूं। मैं आज उन्हीं के सौजन्य से सेवा में भी आया हूं। आज मेरे कार्यालय में 4 पुरुष के चित्र लगे हैं जिनके प्रभाव के कारण मैंने सेवा का कार्य संभाला। इन मनुष्यों ने मेरे जीवन को संवारा है। एक मनुष्य वह था जिसने मुझे उस समय थामा जब कोई मेरी चिंता नहीं करता था। उसने मुझ में रुचि ली और मुझे अपने तरीके से प्रभु में बढ़ने के लिए अगुवाई दी। जी हाँ, मैं बाइबल अध्ययन के लिए कॉलेज में गया। उसने मुझे पैसे का भी प्रबंध कराया। वह मेरी सेवा में मेरे साथ रहा। मैं 3 वर्ष उसका और उसके साथ सेवा करता रहा। वह एक भला मनुष्य था। मैं उसके लिए परमेश्वर का अति आभारी हूं। दूसरा मेरा पादरी था जिसे कोई नहीं जानता था। मेरे विचार में वह एक महान प्रचारक था। तीसरा चित्र और एक बड़े लेखक का है। उनके प्रचार को सुनते ही मुझे उनके समान बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। चौथा चित्र था एक व्यक्ति का जो मुझे हमेशा सहायता प्रदान करता था। वह एक अति बुद्धिमान मनुष्य थे जिनका मेरी प्रचार शैली पर एक महान प्रभाव पड़ा है और मैं व्याख्यात्मक प्रचारक बना। मैं इन सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। अतः यह स्पष्ट है कि यूहन्ना का कहने का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक व्यर्थ हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। इसका उल्लेख वह पहले भी कर चुका है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र आत्मा की सेवाओं में से एक सेवा है हमें शिक्षा देना। वह हमें सत्य में ले चलता है। हमारे महान शिक्षक प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26 पद में, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, सब बातें अर्थात वह सब जो हमारी समझ में नहीं आता है और हमारी समझने की क्षमता में है। कहता है वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस लिखता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है और न वह उन्हें पहचान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे प्रियो, इससे पहले पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, यह विश्वासी को पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यही एक कारण है कि हम विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उसे समझें और उसके अनुसार से हम जीवन बिताएं। मुझे एक महिला ने पत्र लिखा और काफी वर्ष पहले मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ था। वह लगातार हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनती थी और उन्हें रिकॉर्ड करके बार बार सुनती थी तथा अध्ययन के बाइबल संदर्भों को लगातार पढ़ती रहती थी। उसकी आंखें अकस्मात ही खुल गई, उसने प्रभु यीशु को एक नए रूप में देखा। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक था। मैं आज के प्रचलित अधिकांश कार्यक्रमों में विश्वास नहीं करता, वे निश्चय ही आपको भावनाओं से अभिभूत करते हैं, परंतु वे आपको परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु से प्रेम करने के लिए ज्योतिर्मय नहीं कर पाते हैं। भावनाएं किसी काम की नहीं, आवश्यक तो यह है कि हम अज्ञान से मुक्त हों और परमेश्वर के वचन की सत्यता को जानें। मेरे मित्रों, कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने पांवों पर खड़े होने पाएं। और जैसा पत्रस कहता है, पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में, कि जो कोई हमारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आज कई विश्वासी परमेश्वर के वचन के बारे में पूछे जाने पर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। उसका कारण यही है कि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए वे परमेश्वर के वचन का ज्ञान दूसरों तक नहीं बांट पाते हैं। मेरे प्रियो, वचन के अध्ययन द्वारा आप सदैव तत्पर रहें। हमें इस योग्य होना है, परंतु कुछ लोग वर्षों से बाइबल अध्ययन करके भी कहीं नहीं पहुंचे हैं। ये लोग बाइबल अध्ययन का अपमान करवाते हैं। मैं 20 वर्षों से लोगों को बाइबल समझाने में समय बिता रहा हूं और लोगों को बाइबल अध्ययन करते हुए जाते देख रहा हूं, परंतु वे वैसे ही हैं जैसे पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंची। मेरे मित्रों, वे सदा ही बाइबल साथ रखते हैं और टिप्पणियां लिखते रहते हैं, परंतु उनके जीवन में सत्यता नहीं है। एक सभा में एक महिला ने मुझसे एक प्रश्न पूछा और मुझे स्मरण है कि उसने 25 वर्ष पूर्व भी मुझसे वही प्रश्न पूछा था। उसके हाथ में एक पुस्तक थी और वह उसमें लिखती रहती थी। सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। दूसरे शब्दों में हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां परमेश्वर का आत्मा हमारा शिक्षक हो। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आप क्या परमेश्वर के आत्मा से मार्गदर्शन खोजते हैं? क्या आप उसकी अगुवाई मांगते हैं? क्या आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह नहीं समझता, मुझ पर इसकी सत्यता को प्रकट कर। यह महत्वपूर्ण है। यही तो यूहन्ना कहता है, वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कुछ बातें केवल परमेश्वर का आत्मा ही आप पर सत्यापित कर सकता है। वह आगे कहता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परंतु चुने हुओं को भरमा देना संभव नहीं है। पृथ्वी पर रह गए चुने हुओं को ख्रिस्त विरोधी भरमा नहीं पाएगा जब उसका उदय होगा। मेरे मित्रों, मेरी भेंट एक उद्धार प्राप्त दंपति से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, हम हर एक कलीसिया में जाते हैं परंतु हमने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। हम जानते थे कि वहां की शिक्षाएं सच्ची नहीं, परंतु हम उन पर उंगली नहीं उठा पाए क्योंकि हम नहीं जानते थे कि वे कहां गलत हैं। बालकों को प्रभु यीशु द्वारा कही गई बात के अनुसार चलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की संतान गलत चरवाहे के पीछे नहीं जाएंगी। जी हां, वे उसकी वाणी सुनती हैं और पवित्र आत्मा उनका शिक्षक है। यह हमारे लिए एक महान शांति की बात है। हमें प्रत्येक शिक्षक को परख करके देखना है। आप मुझे परखें तो अच्छा होगा। पवित्र आत्मा से पूछें, क्या यह परमेश्वर का सत्य वचन है? क्या जो वचन मैं सुन रहा हूं सत्य है? मेरे मन में इसे सत्यापित करें। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं। जी हां, जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे, तो वह आप पर प्रकट करेगा। वह आपको वचन के द्वारा से शांति देगा, आपको स्पष्ट करेगा कि यही वचन सत्य है। यदि नहीं तो वह आपको शांति नहीं दे पाएगा। मेरे प्रियो, वचन का ज्ञान हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और वह भी सत्य वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यहां पर वह कहता है, अतः हे बालकों, परमेश्वर की सब संतानों जिनका नया जन्म हुआ है, परिपक्वता के अनुसार नहीं। वह आगे कहता है, उसमें बने रहो। यह आदेश नहीं है। यूहन्ना के कहने का अर्थ है, उसमें बने रहते हो। यूहन्ना सहभागिता की चर्चा कर रहा है। उसमें बने रहने का अर्थ है उसकी संगति में रहना। तब वह आगे कह रहा है, जब वह प्रकट हो। यद्यपि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है, हमें उसके पुनः आगमन का निश्चित समय नहीं पता है। यह उसने अपने तक ही सीमित रखा है। मेरे प्रियो, उसने यह समय हमसे क्यों छिपा कर रखा है? कहता है वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हमें उसके आकस्मिक आगमन की बोध में रहना है कि हम लापरवाही ना करें। हमें ऐसा तैयार रहना है कि वह आज आने वाला है। यदि वह इस पल आ जाए तो मुझे प्रचार करता पाए, यह तो बड़ी अच्छी बात होगी। कभी कभी मेरे मन में बुरे विचार आते हैं और प्रभु ऐसे समय आ जाए तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा। अतः हमें उसके आगमन की तैयारी में तत्पर रहना है। आज बहुत सारे विश्वासी निश्चिंत हैं, वे परमेश्वर के आगमन की तैयारी में नहीं जुटे हैं और यही कारण है कि वे परमेश्वर की सहभागिता से परे हैं। यहां पर यूहन्ना कहता है हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आज अनेक जन उसके आगमन की चर्चा करके उत्साहित होते हैं, परंतु जब वह आएगा तब उन्हें हियाब ना होगा, वे लज्जित होंगे। क्यों? उनके जीवन के कारण। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु यीशु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बहुत विश्वासी प्रतिफल की आशा में हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस लिखता है कि जिसके काम आग में जल जाएंगे वह हानि उठाएगा परंतु वह बच जाएगा। अतः सुसमाचार के योग्य जीवन होना अति आवश्यक है। यूहन्ना भी वही कहता है जो पत्रस ने कहा है, झूठी शिक्षा और पाखंड साथ हैं तथा सच्ची शिक्षा और निर्दोष जीवन साथ हैं। आपके जीवन को प्रभावित करने वाली बात इससे बढ़कर नहीं कि आप एक दिन प्रभु के समक्ष अपने कामों का लेखा देंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 10 पद में पौलुस लिखता है अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हमारा उद्धार तो हो चुका है, अब चिंता इस बात की है कि हमें प्रतिफल मिलेगा या नहीं। कुछ लोगों को प्रतिफल नहीं मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 11 पद में पौलुस लिखता है प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं पृथ्वी से उठाए जाने पर समय उत्साहजनक घटना नहीं होगी क्योंकि अनेकों के जीवन यहां ऐसे ही रहे हैं जिससे वे खुश नहीं होंगे क्योंकि उनके कामों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसके 29 पद में हम देखते हैं जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। मेरे प्रियो, यह एक प्रमाण है, परमेश्वर का वचन सच्ची परख है। यूहन्ना वास्तव में कहता है कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर के स्वरूप में दिखती हैं। यदि वे पिता परमेश्वर के स्वरूप में नहीं दिखते तो वे परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरे मित्रों, यह एक सीधी सी बात है कि यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप परमेश्वर के स्वरूप में दिखेंगे, यदि आप नहीं हैं तो आप उसके स्वरूप में नहीं दिखेंगे। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 के विषय को देखेंगे, बालक एक दूसरे को कैसे जाने और एक साथ रहें, संतान के प्रति पिता का प्रेम, आचरण में विश्वासी के दो स्वभाव। हम सबसे पहले इन बातों को देखेंगे कि बालक एक दूसरे को जाने और साथ रहें। मेरे मित्रों, अध्याय 2 का पद 29 इस अध्याय के पहले दो पदों के साथ है। प्रभु यीशु को जानना, उसमें बने रहने की गवाही देना एक बात है, और जीवन द्वारा उसकी धार्मिकता को प्रकट करना एक अलग बात है। यह जानना कि हम मसीह में हैं और उस प्रिय में स्वीकार्य है, यह एक अद्भुत बात है। परंतु यहां ऐसा जीवन जीना जो इसे प्रकट करे, एक अलग बात है। यूहन्ना कहता है कि विश्वासी की पहचान उसके वचनों से नहीं, उसके जीवन से होती है। पिता और संतान का गुण है धार्मिकता। परमेश्वर की संतान में उसके गुण होते हैं। प्रश्न यह है, क्या आपके जीवन में ये गुण हैं? यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपके अंदर में धार्मिकता के गुण होंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, तो ये गुण आप में नहीं होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दास यूहन्ना हमें यही बात समझाना चाहता है कि अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, वचन की ज्ञान की गंभीरता को हमें समझाता है, और हमें पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक मानकर आगे बढ़ना है, ताकि हम पिता को जानें, पुत्र को जानें और परमेश्वर के वचन को जानें और उस गुण को, उस धार्मिकता की गुण को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।